नवीनता के बारे में कह रहे थे। चारों ही सब्जेक्ट में स्व के प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, औरों को सहज योगी बनाने में और परसेंटेज बढ़ना माना नवीनता। तो इस वर्ष महादानी वरदानी मूर्त स्वयं प्रतिभि और सर्व प्रतिभि बनो और हर रोज कोई ना कोई नवीनता अर्थात प्रोग्रेस अवश्य करो। तो ये हुआ स्व के पुरुषार्थ के प्रति। अभी सेवा में क्या नवीनता लाएंगे? ज्ञान में कह दिया, योग में कहा, अरे बाबा सेवाओं के लिए कह रहे हैं। सेवा में भी नवीनता लानी है। मेले भी बहुत किए, प्रदर्शनियां तो अनगिनत कर ली, सेमिनार कॉन्फ्रेंस भी बहुत की, अभी आवाज बुलंद करने वाले माइक तो तैयार करने ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है? वैसे पहले भी सुनाया है लेकिन किया कम है। सेवा में नवीनता। सेवा के रिजल्ट में देखा गया है कि बड़े निमित्त आत्माओं को समीप लाने के पहले चाहे कोई नेता है, चाहे कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे कोई बड़ा ऑफिसर है, लेकिन उनको समीप लाने का साधन है बाबा सेवाओं की नवीनता कह रहे हैं यहाँ पर। कि मेले बहुत किए, प्रदर्शनियां बहुत की, सेमिनार कॉन्फ्रेंस बहुत किए, आवाज बुलंद करने वाले माइक तो तैयार करने ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है? तो जो भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो भी बड़े नेता है, जो भी बड़े ऑफिसर है, उनको समीप लाने का साधन क्या है?
सहयोग।
स्नेह और सहयोग। और कुछ प्रैक्टिकल? योग का दान करना। और नवीनता सेवाओं में नवीनता।
साक्षात्कार मुहूर्त।
साक्षात्कार मुहूर्त। और थोड़ा लोअर थोड़ा नीचे ब्रह्मा भोजन खिलाना। बरबर। और बाबा कहते हैं सेवा के रिजल्ट में देखा गया कि बड़े निमित्त आत्माओं को समीप लाने के पहले चाहे कोई नेता, चाहे कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, चाहे कोई बड़े ऑफिसर, लेकिन उन्हों को समीप लाने का साधन है, उन्हों के सेक्रेटरी को अच्छी तरह से समीप लाओ। आप लोग बड़ों के ऊपर टाइम देते हो, वो अच्छा अच्छा कहकर फिर सो जाते हैं, उन्हों को फिर जगाने के लिए इतना टाइम तो मिलता नहीं, ना वो देते ना आप जा सकते हो, इसलिए सेक्रेटरी जो होते हैं वो बदलते भी नहीं। बड़े तो सब बदल भी जाते हैं, आज एक मिनिस्टर की सेवा करते हो और कल वो प्रजा बन जाता है। सेक्रेटरी काफी सहयोगी बन सकते हैं, तो सेक्रेटरी की सेवा करो। तो किसी भी वर्ग की सेवा में इस वर्ष विशेष सेक्रेटरी, मैनेजर्स, वो प्राइवेट असिस्टेंट, जो भी शक्तिशाली हो, बड़ों के समीप हो, उन आत्माओं की सेवा विशेष करो। तो सेवा में नवीनता के लिए किसकी सेवा करो? मैनेजर, सेक्रेटरी, प्राइवेट असिस्टेंट। सेक्रेटरी की कोई कॉन्फ्रेंस होती है क्या? होती है, मैनेजर्स की होती है। पर्सनल
जैसे बोले ना ब्रह्मा।
तो एक तो ये हो गई सेवा में नवीनता, इंडस्ट्रियलिस्ट, नेता, बड़े लोग, बड़े ऑफिसर, उनके सेक्रेटरी की सेवा करो बाबा कहते। दूसरी सेवा में नवीनता, और क्या नवीनता लाएंगे? हाँ नहीं, वो तो कर लिया, प्रदर्शनी अनेक कर ली, मेले बहुत कर लिए, सेमिनार कॉन्फ्रेंस बहुत कर ली, अभी माइक तैयार करने ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है? तो एक तो कहा कि सेक्रेटरी, और दूसरा जाते रहो छोड़ना नहीं। दूसरी बात, पहले भी इशारा दिया है कि वर्तमान समय कम खर्च वाला नाम वाला, उसकी विधि है जो भी छोटे या बड़े संस्थाएं है, बड़ी संस्थाएं एसोसिएशन है, उन्होंने से संबंध संपर्क रखो, बनी बनाई स्टेज पर नाम बाला करो, एक है हम स्वयं करें, उसके लिए ये कब का है 79 93। एक है सारा आयोजन खुद करो, एक है जो संस्था है बनी बनाई है उनको कहो बस हमारे वो लोग सब अरेंज करेंगे, हमें बस जाकर बोलना है। कम खर्च नाम वाला करते हो लेकिन और तीव्र गति से, हर देश में या हर गांव में या हर जिले में, देश का जिला उसमें क्या जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के एसोसिएशन है, जैसे कि कौन कौन से एसोसिएशन कहाँ कहाँ है, सेवाओं में क्लब, रायंस क्लब, रोटरी क्लब, स्कूल, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, होम्योपैथी कॉलेज और यूथ एसोसिएशन, बजरंग दल और महिलाओं की संस्था है और कहाँ मिनिस्ट्री, आरएसएस, हॉस्पिटल, इसमें मुश्किल है, वहां नहीं रखेंगे। अच्छा तो जो भी है ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के एसोसिएशन है, देश में, गांव में, जिले में, या बहुत वर्ग के कार्य करने वाले हैं, कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं या सम्मेलन करते हैं, तो बनी बनाई स्टेज पर संदेश दो तो समय और मेहनत दोनों बच जाएंगे। अभी इसको तीव्र गति से मिलाओ, चेक करो कि जिस देश के व जिस स्थान के निमित्त बने हैं उस स्थान की कोई भी संस्था वंचित नहीं रह जाए। या आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, चिन्मय मिशन, रामकृष्ण मिशन, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, योगादा सत्संग सोसाइटी, इस तरह की बहुत सारी। हाँ हाँ हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस होती है ना, नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, रिलीजियस शांति सम्मेलन होते हैं बहुत सारे, उसमें जा सकते हैं, जेल में जा सकते हैं, तो जाते हैं देने, नहीं कभी कभी रेगुलर भी जाते हैं, जेल और हॉस्पिटल, कहीं कहीं रक्षाबंधन। हाँ तो जेल में भी बहुत अच्छी सेवा है, उन्हें तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस ज्ञान की, क्योंकि
कंस का, कृष्ण का जन्म जेल में है,
इसके लिए जेल में जाकर सेवा करेंगे। नहीं, कैदियों को क्यों आवश्यकता है ज्यादा, क्या कारण है, पश्चाताप में होते हैं, दुखी दुख में होते हैं, दर्द में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, क्योंकि एक क्षण मात्र जो आवेश आ गया उसमें गलती हुई होती है, उसके कारण रिलेटिव, हाँ बेड टू बेड और रिलेटिव्स, उनके जो परिजनों की सेवा करना, मरीज और मरीजों के परिजनों की सेवा,
वेट करते मैंने देखते भगवान के,
हमारे उधर एक कौन सा, अच्छा राइट टू गॉड, हाँ कभी कुछ कुछ हमारे पास उधर एक लेप्रेसी हॉस्पिटल था, कुष्ठ रोग अस्पताल, तो वो लोग भी बहुत दुखी रहते जो कुष्ठ रोगी होते हैं ना, लेप्रेसी पेशेंट्स, उनके रिलेटिव्स उनको डाल के चले जाते हैं, कोई मिलने नहीं आता है बाद में। हाँ हाँ, इसके लिए बहुत उसके प्रति ये है ना, कलंकित, कलंक है जैसे संसार में, तो उनको मिलने कोई नहीं आता है, देखने कोई नहीं आता है, ऐसी ऐसे स्थानों पर। फिर हो गया वो वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम में भी जो लोग रहते हैं वो भी भले उनके बेटे उसी शहर में है परंतु देखने नहीं आते। वहाँ अगर इंटरव्यू लिया गया उन लोगों का तो वो जाना नहीं चाहते वापस, क्योंकि उनको जो प्यार वहाँ मिला वो घर पे नहीं मिला था, इसके लिए वो चाहते हम यहीं रहे। तो वहां पर भी सेवाएं हो सकती है, अनाथ आश्रम, बच्चों अनाथ आश्रम जो होते ना उसमें भी। हाँ तो
ये तो बाहर होता है, मधुबन में कुछ नहीं होता बाहर में तो
सेवाओं का स्थान ही मधुबन तपस्या का स्थान है, सेवा केंद्र सेवा का स्थान है। बाबा ने तो एक मुरली में स्पष्ट कह दिया, मधुबन अर्थात तपस्या स्थली, यहाँ केवल तपस्या है। सेवा अगर करनी है तो यहाँ सेवा है नहीं है, सेवा तो बाहर है। ये बहुत पहले कहा था, परंतु अभी भी जो विस्तार यहाँ है तो सेवाएं तो बहुत है यहाँ पर फिर भी
बहुत सेवा।
तो बाबा नवीनता चाहता है अभी हर बात में। तो आगे क्या कह रहे हैं कि जो भी एसोसिएशन से या बहुत वर्ग के कार्य करने वाले, कॉन्फ्रेंस करने वाले, सम्मेलन करने वाले, तो बनी बनाई स्टेज पर संदेश दो, समय और मेहनत दोनों बच जाएगा। अभी इसको तीव्र गति से लाओ, चेक करो कि जिस देश के वह या जिस स्थान के निमित्त बने हैं उस स्थान की कोई भी संस्था वंचित नहीं रह जाए। संस्थाओं की लिस्ट निकालो, कौन कौन सी संस्था है, आध्यात्मिक है चाहे कोई भी, समाज सेवी संस्था, और वहां जा जाकर सेवा करनी है। क्योंकि वर्तमान समय वायुमंडल परिवर्तन हो गया है, अभी डर कम है, स्नेह ज्यादा है, अच्छा मानते हैं, पहले डर था, अच्छा बनते नहीं है लेकिन अच्छा मानते जरूर है। इसलिए इस दो प्रकार की सेवा को और अंडरलाइन करो तो सहज माइक तैयार हो जाएगा। सेवा में नवीनता, कॉन्फ्रेंस बहुत कर ली, प्रदर्शनियां बहुत कर ली, सेमिनार बहुत कर लिए, कॉन्फ्रेंसेस मेले बहुत कर लिए, अभी क्या करो, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े ऑफिसर्स है और बड़े बड़े नेता है, उनके जो सेक्रेटरी है जो बदलते नहीं है, उनकी सेवा करो। एक तो ये, और दूसरा जो बनी बनाई स्टेज है, एसोसिएशन संगठन, उन वहां पर जाकर सेवा करो। नया वर्ष शुरू किया है ना, तो नई विधि और विधान भी चाहिए, नई विधि और नया विधान। इस नए वर्ष का अमृत वेले सदा यह स्लोगन इमर्ज करना कि सदा उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरों को भी उड़ाना है, बीच बीच में चेक करना है। ऐसे नहीं कि अमृत वेले चेक करो और सारा दिन मर्ज कर दो, फिर रात को सोचो कि आज का दिन तो ऐसे ही रहा, नहीं, बीच बीच में चेक करो, चाहे कितना भी व्यस्त हो, सेवा की खींचतान हो, परंतु बीच बीच में बाबा ने क्या कहा है उस दिन संडे, अशरीरी बनने का अभ्यास करो, अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। अति के समय में अंत की स्टेज का अनुभव करो, नहीं बीच बीच में चेक करो, इमर्ज करो कि उमंग उत्साह के बजाय कोई और रास्ते पर तो नहीं चले गए। उमंग उत्साह को चेक करने के लिए कह रहे बाबा, उड़ती कला के बजाय और किसी कला ने अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं कर लिया, चलते चलते उदासी, अवसाद, खिन्नता, एक दुख आ जाता है इस जीवन में, तो वो कभी ना आए। फिर दादियों से मुलाकात, निमित्त आत्माएं हर समय प्रत्यक्ष फल खाने वाली है, भविष्य तो आपके लिए निश्चित है ही, वह तो होना ही है, लेकिन प्रत्यक्ष फल कितना प्यारा है, अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति करते ही रहते हो, अभी अभी किया और अभी अभी पाया, संगम युग है, अभी अभी करने का और अभी अभी पाने का युग। सबसे श्रेष्ठ फल कौन सा है, प्रत्यक्ष फल में सबसे श्रेष्ठ फल खुशी और नशा, अभी अभी किया और अभी अभी नशा चढ़ गया, अभी अभी किया और अभी अभी खुशी मिल गई, अभी अभी किया और अभी अभी शक्ति मिल गई, अभी अभी किया और अभी अभी दुआएं, अभी अभी किया और अभी अभी संतुष्ट हो गए, संतुष्टता हो गई ना, किसी को ज्ञान सुना दिया या कोई सेवा बहुत अच्छे दिल पूरा लगन से लगा,
रिजल्ट देखने को मिले
उसका, वो जो बाद में प्रत्यक्ष होता तुरंत डायरेक्ट ताबड़तोब इमीडिएट एज अर्ली एज पॉसिबल, तभी के तभी टोली क्या अच्छा थोड़ी मिल जाती तो प्रत्यक्ष फल में एक है खुशी, प्रत्यक्ष फल है दुआएं, प्रत्यक्ष फल है नशा, प्रत्यक्ष फल है संतुष्टता, और भी कुछ है उमंग उत्साह और बढ़ जाता है, उमंग उत्साह बढ़ जाता है, प्यार भी बढ़ जाता है कि हाँ बाबा कुछ और कह रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल है समीपता का अनुभव होना, और समीपता की निशानी है समान बनना, समीपता का बाप से समीपता का अनुभव सेवा करने के बाद। प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो इसलिए सदा हेल्दी वेल्दी और हैप्पी हो। कोई भी पूछता है कैसे हो तो क्या कहेंगे, कहेंगे हेल्दी भी है, वेल्दी भी है और हैप्पी भी है। तो जैसे साकार दुनिया में आजकल कहते हैं ना, क्या कहते हैं साकार दुनिया में फल के लिए डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, ताजा फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे। हेल्दी रहेंगे तो फल खाएंगे, वेल्दी रहेंगे तो फल खाएंगे। अच्छा अच्छा तो फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे ऐसे डॉक्टर लोग कहते हैं। हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं, एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, प्राइस ऑफ एप्पल कीप्स मैन अवे, ऐसा कहते हैं आगे कि एप्पल की जो प्राइस है कीमत वो मनुष्य को दूर रखती है। हेल्दी रहने का साधन फल बताते हो, और आप तो हर सेकेंड प्रत्यक्ष फल खाते ही रहते हो, मिलता ही रहता है, तो सदा एवर हेल्दी है ही। बाप दादा ने सुनाया था, अगर ब्राह्मण बच्चे से कोई पूछे क्या हाल है तो क्या कहेंगे, खुशहाल है और चाल क्या है, फरिश्तों की चाल है, फरिश्तों की चाल है और खुशहाल है। फिर बाबा सभा से पूछते हुए, सभी ऐसे हो ना, या कभी कोई हालचाल में फर्क पड़ जाता है, एक दो से मिलते हो तो क्या पूछते हो, क्या हालचाल है एक दो से, और बाहर वाला कोई पूछे तो, मुरली थी ना एक, किससे पूछ रहे हो। पता है किससे पूछ रहे हो, पार ब्रह्म को पाने, पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा को पाने की चाहत ही वो मिल गया। होश में तो हो, किससे पूछ रहे हो, एक दो से मिलते हो तो क्या पूछते हो, क्या हालचाल है। तो ब्राह्मण अर्थात खुशहाल और फरिश्तों की चाल में सदा उड़ने वाले, फरिश्तों की चाल, फरिश्तों की चाल कैसी होती है, खुशहाल अर्थात प्रॉस्परस, अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉस्परस, वेल टू डू, संपन्न परिवार, भरपूर जो है, खुश और हाल दो शब्द है उसमें, खुशी भी है और भरपूर भी है, इस तरह का शब्द है। फरिश्तों की चाल में सदा उड़ने वाले हो, फरिश्तों की चाल कैसी होती है, हल्का, डबल लाइट। कोई एक बहन टप 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 करके चल रही थी चप्पल पहन के, तो मम्मा ने कहा था कि ऐसा अगर चलोगे तो धरती को भी कष्ट होता है। तो धरती को भी कष्ट होता है अगर हम जोर से चलते हैं, और अगर धरती को अगर कष्ट होता है तो धरती क्या करती है, फिर धरती भी कष्ट देती है, फिर धरती भी फटती है, और फिर सारी इमारतें गिर जाती है, सारे मीनार जमींदोज सड़के भी धस जाते हैं, लोग मलबे में दब जाते हैं, चारों तरफ तबाही तबाही। अगर धरती को गुस्सा आ गया तो एक ही तत्व ने ये कर दिया, जब पांचों ही तत्व एक साथ आक्रमण करेंगे तो क्या होगा, एक तरफ पांच तत्वों का आक्रमण, दूसरी तरफ अभी भी झटके आ ही रहे, आफ्टर शॉक्स जिसको कहते हैं, पहला तो आया उसके बाद में चालू ही है, अभी भी 70 झटके तो चालू ही है, छोटे छोटे, तो उसमें बारिश, उसमें राहत कार्य रुक गया है, उस वजह से एयरपोर्ट बंद, एयरपोर्ट भी बंद हो गया। तो पहले ही निर्धन देश उसमें ये सब आफतें, तो क्या हाल हो जाएगा। एक ही तत्व ने यह कर दिया। तो जब पांचों तत्व एक साथ आक्रमण करेंगे, साथ साथ पांच विकार आक्रमण करेंगे, साथ साथ पुराने संस्कार आक्रमण करेंगे, और साथ साथ जो आत्माओं ने शरीर छोड़ा वो एक साथ किसमें प्रवेश करेगी, जो कमजोर आत्मा है, जो अपने देह की मालिक नहीं है, भटकती हुई आत्मा उनमें प्रवेश करती है जो अपने देह की मालिक नहीं है, ऐसे शरीरों में, ऐसी तो उस समय कैसा होगा दृश्य, तांडव नृत्य होगा विनाश का। तो बाबा पूछते, फरिश्तों की चाल में सदा उड़ने वाले हो, तो नए वर्ष में हर सेकंड हर संकल्प में खुशहाल रहना है, सदा हर संकल्प में। अगर एक भी संकल्प दुख का आता है, विषाद का आता है, दर्द का आता है, पीड़ा का आता है, पश्चाताप का संकल्प आता है, तो उसे खुशहाल नहीं कहेंगे। एक भी संकल्प, संकल्पों की चेकिंग करनी है, बेहाल नहीं खुशहाल। नाचो गाओ, नाचने और गाने को कहते हैं बाबा। गाना आता है ना, तो गाओ और नाचो। और क्या करना है चिमन भाई, और क्या करना है? एक तो गाना है, नाचना है। हाँ हाँ बोला। ब्रह्मा भोजन खाओ और नाचो और गाओ, कहाँ भी हो लेकिन याद में बनाते हो, याद में खाते हो, तो ब्रह्मा भोजन है। ब्रह्मा भोजन क्या है उसकी परिभाषा है। आज भी मुरली में बाबा ने कहा है, विश्व का मालिक बनने के लिए बाबा जो परहेज बताते हैं वो परहेज अगर करते हैं, याद में भोजन बनाते और याद में भोजन खाते हो, ये परहेज है विश्व की मालिक बनने के लिए, इसकी मुरली में है। तो कहां भी हो लेकिन याद में बनाते हो, याद में खाते हो, तो ब्रह्मा भोजन है। याद में बनाना और याद में खाना। कभी बाबा ने एक अव्यक्त बापदादा का संदेश था, यदि भोजन याद में बनाया जाए और भोजन यदि याद में खाया जाए तो 50% प्यूरिटी वैसे ही अचीव हो जाती है बिना कुछ किए, परंतु शर्त है याद में बनाया हुआ हो और याद में खाया हुआ हो। वो कहा मैंने बताया था शायद ने, एक बार चार थालियां बाबा के सामने आई, एक मधुबन की थाली बाबा के सामने आई, एक सेंटर की थाली बाबा के सामने आई, एक गृहस्थी की थाली बाबा के सामने आई और एक कुमार की थाली बाबा के सामने आई। चार थालियां आई है। अभी बाबा की दृष्टि पहले किस थाली पर पड़ेगी? सबसे पहले मधुबन की थाली है जिसमें पैसा कहीं और से आ रहा है, पैसे देने वाले कोई और, फिर उसके बाद में वो अनाज डिपार्टमेंट वाले कुछ और, फिर उसके बाद में भोजन बनाने वाली माता है, और वो पता नहीं बाप की याद में बना रही है अपने बेटे पोत्रे धोत्रों की याद में बना रही है, थोड़ा सा संदिग्ध है बीच बीच में। भोजन बनाते बनाते रोटी बनाते बताते अपने बेटे की याद आ गई एकदम अचानक, तो आंसू आ जाते हैं, यहां से वहां पहुंच जाते सीधा, बाप की याद में नहीं, बाप की याद में तो बना रही थी पर बीच में अचानक से याद आ गई, तो वो आंसू भी मिल जाते हैं उसमें। तो भोजन बनाने वाले कोई और, भोग लगाने वाले कोई और फिर परोसने वाले कोई और वो खाने, वो थाली वो आई बाबा के सामने, एक थाली। दूसरी थाली आई सेंटर की थाली, पैसे कहीं और से आ रहे हैं, भोजन कोई और बना रहा है और भोग चलो वही लगा रहे, जो बना रहे वही भोग लगा रहे, वो भी थाली बाबा के सामने आई। तीसरी थाली आई गृहस्थी की थाली, खुद पका रहे खुद कमाई कर रहे गृहस्थी, परंतु पकाने वाला कोई और है, मतलब एक ही घर से एक जन कमा रहा है, बहन जो माता है वो पका रही है और शायद वही भोग लगा रही है या कोई और भोग लगा रहा है घर का, वो एक थाली बाबा के सामने आई। और देवेंद्र भाई एक चौथी थाली आई बाबा के पास कुमार की, जो कि अकेला रहता है, खुद कमाता है, खुद पकाता है और खुद भोग लगाता है और खुद बाप की याद में खाता है, तो बाबा की दृष्टि सबसे पहले डॉक्टर कुमुद किसमें कौन से थाली पर पड़ेगी।
तो बताएंगे नहीं
बताएंगे। तो ऐसे कुमार समझे क्या आप, तपस्वी कुमार की बात चल रही है? ऐसे वैसे कुमार नहीं, शक्तिशाली पावरफुल कुमार। सनत कुमारों का गायन है, सनत सनातन सननंदन पूरा शास्त्रों में कितने शक्तिशाली थे वो चार, वो कुमारों की बात चालू है। तो ब्रह्मा भोजन खाओ और नाचो और गाओ, कहां भी हो लेकिन याद में बनाते हो। याद में कैसे भोजन बनाएंगे, क्या विधि है? एक तो ये संकल्प कि बना किसके रहे, एक तो ये संकल्प है कि इतना टेस्टी बनाओ कि जो खाएगा वो खुश हो जाएगा, ये भी एक संकल्प है। जितना हो सके उसको बहुत टेस्टी बनाना है, उसमें बाबा की याद थोड़ी सी बाहर है। ये सारा ध्यान इस पर है कि टेस्टी है, और टेस्टी बनाने के बाद में फिर कैसा था, ठीक तो था? अरे बहुत बढ़िया था। तुमने बनाया? अरे बहुत बढ़िया था। तो उसमें भी तो खुशी होती है ना थोड़ी सी। भोजन बनाते समय क्या संकल्प? एक तो ये भी संकल्प है जैसे कहा कि बहुत टेस्टी बनाना है, सबको खुश करना है, सबको संतुष्ट करना है। उसमें थोड़ी सी स्तुति प्रशंसा की भी कामना रहती है बनाते समय, मतलब कि बाबा के लिए बना रहे वो तो एक छोटा संकल्प है, पर बड़ा संकल्प ये रहता है कि सब पूछे, सब उधर नाम हो जाए कि आज बहुत बढ़िया बनाया, किसने बनाया। एक तो ये भी रहता है, पर संकल्प कौन सा होना चाहिए? तो बाबा के लिए बना रहे एक तो ये, और बनाते समय क्या क्या करें? लवली अवस्था में बनाया जाए, याद में बनाया जाए। बाबा ने कभी शांतिवन में व्यक्तवाणी में कहा था, बाबा ने कहा था कि तुम बहुत बढ़िया भोजन बनाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाप की याद में बनाते हो, अव्यक्त महावाक्य है, क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस हो गई है बनाते बनाते। तो जरूरी नहीं है कि तुम बहुत अच्छा बनाते हो तो याद में बना रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है बनाते बनाते। एक तो याद में, दूसरा किस संकल्प के साथ, और जो जो सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है उस एक एक सामग्री को सकाश देते देते, जैसे तेल डाल रहे वो तेल को पवित्रता की किरणें, और कुछ डाल रहे उसको पवित्रता की किरणें, जो एक एक सामग्री है, छोटी छोटी जो उसमें चीजें हैं, चाहे वो नमक है चाहे वो कुछ भी हो, उस एक एक चीज को सकाश देते हुए, और दूसरा मौन में, तीसरा भोजन बनाते बनाते खाना नहीं है उसको। कई लोग ऐसे भी करते बीच में हाँ टेस्ट तो ठीक है, पर थोड़ा थोड़ा ये भी देखा गया है कि भोजन भी बना रहे बीच में कुछ और भी खा रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं, एक ही काम करना है। भोजन एक बहुत बड़ा यज्ञ है, एक रीति से रसोई जो है वो, उसको चौका कहा जाता था किसी जमाने में। चौका अर्थात चार चीजें उसमें, पहला तो भोजन जो है उसका पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किस पैसे से बनाया जा रहा है, दूसरा जो बना रहा है वो किस संकल्प से बना रहा है, चौथा जो खा रहा है वो किस संकल्प से खा रहा है और किस भाव से खा रहा है, और उसमें और एक चौथा जो था वो है साफ सुथरा, कितना साफ सुथरा है, जो कि जगदीश भाई ने अपनी किताब में कहा है कि तीन प्रकार के दोष है, एक जाति दोष, निमित्त दोष और आश्रय दोष। जाति दोष अर्थात सतो रजो तमो, अन्न के ही ये प्रकार है, सात्विक अन्न है, राजसिक है कि तमो, तो ये है जाति दोष। दूसरा है आश्रय दोष, आश्रय दोष में और तीन प्रकार नहीं, आश्रय दोष में एक है निमित्त, निमित्त दोष जो है वो मतलब कंकड़ पत्थर बाल ये सब है तो वो है निमित्त दोष। तीसरा है जाति आश्रय दोष, आश्रय दोष में ये पैसे की बात आती है, मतलब किस विधि से पैसा कमाया जा रहा है। एक अगर हम वो पैसा कमा रहे हैं वो गलत तरीके से कमाया जा रहा है तो वो आश्रय दोष। दूसरा है, हम यदि किसी और पर आश्रित है और वो व्यक्ति किसी गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, वो एक सेकंड। और तीसरा उसमें है संकल्प, बनाते समय कौन से संकल्प है। तो सबसे पहला दोष है निमित्त दोष, जाति दोष सतुरजोतमो, दूसरा है आश्रय दोष और तीसरा है निमित्त दोष। ये तीन प्रकार के अन्न के दोष है। तो रसोई को चौका कहा जाता है, और किसी जमाने में भारतीय संस्कृति में जो खाना बनाने वाले उन्हें क्या कहा जाता था, और भी कुछ शब्द है, महाराज। क्यों महाराज कहा जाता था, महाराज कहा जाता था उनको, क्यों? महाराज अर्थात जो राजा है, जो अपनी इंद्रियों का स्वामी है, जो इंद्रिय जीत है वही भोजन बना सकते हैं। और जो महाराज लोग होते थे उनका जो स्थान था, उनके अपने अलग से कपड़े होते थे जिसमें सिलाई नहीं होती थी, ऐसे कपड़े पहनते, मतलब वो ओढ़ लेते थे पूरा, और वो जहां भोजन बनाते थे वहां और कोई नहीं आ सकता है। इतनी स्वच्छता, इतनी पवित्रता। भोजन को संस्कृत में क्या कहा जाता है, भोजन पाक शास्त्र या स्वयं पाकी कहा जाता है। स्वयं पाक मराठी में शब्द है, स्वयं पाक घर। स्वयं पाक अर्थात वल्लभाचार्य और ये जो रामानुजाचार्य के अनुयायी है वो खुद भोजन बनाते थे, स्वयं पाकी थे वो। स्वयं पाकी अर्थात खुद का भोजन खुद बनाना, स्वयं पाक। इसके लिए पाक शास्त्र है, पाक कला कहा जाता है, भोजन बनाने की कला को पाक कला, पाक शास्त्र, स्वयं पाकी। तो भारतीय संस्कृति में देखो कितना महत्व है अन्न का, खुद भोजन बनाना स्वयं पाक, जो भोजन बनाते वो महाराज, जो रसोई है उसे चौका, ऐसे अलग अलग शब्द है। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्मा भोजन खाओ और नाचो और गाओ, कहाँ भी हो लेकिन याद में बनाते हो, याद में खाते हो तो ब्रह्मा भोजन है। तो ठीक है, सब अच्छे थे, अच्छे हैं, अच्छा। डबल विदेशी डबल खुश होते हैं क्या? ऐसे नहीं, खुशी भी, खुश भी बहुत होते हो और फिर उदास भी बहुत हो जाओ। खुशी बहुत तो उदासी भी डबल, बैलेंस। ऐसे नहीं करना, इस वर्ष में उदास या अकेलेपन या व्यर्थ भाव लाना ही नहीं, तब तो नई दुनिया को समीप लाएंगे ना। अच्छा, नए वर्ष में नया उमंग है, नया उत्साह है, अभी सभी को ऐसे नचाते गाते रहना। अच्छा, हर समय मुबारक है, अविनाशी मुबारक है। अच्छा, तो चारों ओर के नव जीवन अनुभव करने वाले सर्व ब्राह्मण बच्चों को, सदा नवयुग के आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा संकल्प बोल और कर्म द्वारा महादानी वरदानी आत्माओं को, सदा स्वयं की स्थिति द्वारा औरों की परिस्थिति को भी सहज बनाने वाले समर्थ आत्माओं को, सदा हर दिन स्वयं में प्रगति अर्थात नवीनता अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को, सदा इकोनॉमी और एक नॉमी करने वाले बाप समान समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।